नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी की संपत्ति $137 बिलियन हो गई है। अडानी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एलन मस्क और जेफ बेजोस से पीछे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पहली बार है जब किसी एशियाई व्यक्ति ने दुनिया के शीर्ष तीन सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और चीनी कंपनी अलीबाबा समूह के जैक मा भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं। गौतम अडानी अडानी समूह के सह संस्थापक हैं, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। इस समूह को देश का सबसे बड़ा कोयला ट्रेडर भी कहा जाता है। निजी क्षेत्र के तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपने 132 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए प्रति शेयर 500 से 525 रुपए का मूल्य दायरा तय किया है। आईपीओ 5 सितंबर को खुलेगा और 7 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 2 सितंबर को खुलेगी। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार निर्गम के तहत 1.58 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। तूतीकोरिन स्थित बैंक नए निर्गम से प्राप्त आय का उपयोग भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने टीयर वन पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए करेगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक देश के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। ये मुख्य रूप से एमएसएमई, कृषि एवं खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ मुहैया कराता है। बैंक को आईपीओ के माध्यम से 831.6 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। शेयरों को बीएससी और एनएससी पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी ऑडी वैश्विक आपूर्ति चिंताओं के बावजूद इस साल भारतीय बाजार में अपनी बिक्री में 2 अंकीय वृद्धि बरकरार रखने में सफल रही है। कंपनी को भरोसा है कि आगामी त्योहारी मौसम में उसकी बिक्री में और तेजी आएगी। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लन ने मंगलवार को पीटीआई भाषा से कहा कि कंपनी भारतीय बाजार को लेकर काफ़ी आशान्वित है। उन्होंने कहा कि घरेलू मांग में तेजी का सिलसिला त्योहारी मौसम में और जोर पकड़ने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑडी ने मंगलवार को अपने लोकप्रिय मॉडल Q3 को नए सिरे से पेश किया है। 2 साल के अंतराल के बाद Q3 अब फिर से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसकी शोरूम कीमत 44.89 लाख रुपए रखी गई है। जनवरी से जून 2022 के दौरान कंपनी की खुदरा बिक्री 49% से बढ़कर 1765 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले की पहली छमाही में कंपनी ने 1181 इकाइयों की बिक्री की थी। इस संदर्भ में ढिल्लन ने कहा, निसंदेह पहली छमाही अच्छी रही। अब हम दहाई अंकों में उच्च वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए कोई सटीक अनुमान नहीं दिया जा सकता है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों का इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग को इस मद में 40 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को उनका बकाया अनुदान जल्द ही मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने वाहन की बैटरी क्षमता के अनुसार 2 पहिया वाहनों पर ₹5,000 से ₹10,000 और 3 पहिया वाहनों की खरीद पर ₹10,000 से ₹20,000 की SGST राशि की प्रतिपूर्ति करने की घोषणा की थी। महिंद्रा अपनी 5 इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है, जिनमें से कंपनी 8 सितंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने वाली है। महिंद्रा जिस इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च कर रही है उसे महिंद्रा XUV400 नाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा XUV400 कंपनी की मौजूदा कॉम्पैक्ट SUV XUV300 का अपडेटेड वर्जन है, जिसे इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक SUV में कंपनी लंबी रेंज के साथ हाईटेक फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को भी जोड़ रही है। महिंद्रा XUV400 को कंपनी 8 सितंबर को लॉन्च कर रही है, लेकिन इससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV को 2020 के ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले किया जा चुका है। इस इलेक्ट्रिक SUV का डिज़ाइन XUV300 से काफ़ी मिलता जुलता है, जो एक पेट्रोल डीजल वाली SUV का फील देती है। IMF ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक मोड़ पर है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुई है और यूक्रेन युद्ध और घरेलू चुनौतियों के चलते असामान्य और असंतुलित वृद्धि हुई है। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को पाकिस्तान के ईएफएफ कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दी थी। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को सातवीं और आठवीं किस्त के रूप में 1.17 अरब डॉलर मिलेंगे। ऋणदाता ने ऋण योजना को मंजूरी देते हुए कहा, पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक मोड़ पर है। बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज में डूबे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड के खिलाफ एनसीएलटी का रुख किया है। बीओआई ने एनसीएलटी के सामने एफएलएफएल के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए एक याचिका दायर की है। एफएलएफएल ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के तहत दायर याचिका की गई है। एफएलएफएल ने कहा, कंपनी उपरोक्त मामले में कानूनी सलाह ले रही है। एफएलएफएल पहले ही 2 अन्य दिवाला याचिकाओं का सामना कर रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।